कान पड़ाए न पड़न गया,
कान पड़ाए न पड़न गया,
यो जीव करे कृष्ण भगवान हत्या करा।
जोधपुर के अंदर राजा जोधा नागराज करते थे, जिनकी रानी का नाम रूपाणी था। एक दिन किसी बात पर राजा रानी की शर्त लगी। शर्त में राजा ने बात रखी कि रानी अगर बात तेरी सच्ची हुई तो 12 साल के लिए राज छोड़कर राज से बाहर मैं जाऊंगा, और बात मेरी सच्ची हुई तो 12 साल के लिए राज से बाहर जाना पड़ेगा। बात को देखा आज माया गया, आखिर राजा की सच्ची हुई और रानी रूपाणी को राज से बाहर निकलने का हुक्म दिया गया। उससे पहले राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, रानी कुछ दिन की गर्भवती थी। रानी को गर्भवती जानकर राज के कई कर्मचारी और मंत्रियों ने राजा को समझाने की काफी कोशिश की, मगर राजा ने सबकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। रानी रूपाणी को राज से बाहर जाने के लिए कहा, रथ तैयार कराया, उसमें बिठाकर कहा रथवान से कि मेरी राज्य की सीमा से बाहर कर दो। वो राजशाही पोशाक बदलकर साधारण निवास में रानी रूपाणी रथ में बैठकर रथवान के साथ राज्य की सीमा से बाहर हो जाती है और रथवान उसे छोड़कर वापिस आ गया। दूसरी तरफ आगे बढ़ी तो एक और राज्य था, माधवपुर राज्य, जिसमें राजा राजसिंह राज करते थे। उनके राज्य की सीमा में प्रवेश करके चलते चलते गहरा वन आया। चली जा रही थी, एक ऋषि का आश्रम देखकर विचार करती है, ऋषि महान पुण्य आत्मा होते हैं, ये 12 साल का अरसा इनके साथ इनके पास रहकर इनका उपदेश सुन करके तू बिता लेगी तो बहुत अच्छा होगा, जीवन का उद्धार होगा। जाकर ऋषि की शरण ली, ऋषि ने अपने आश्रम पर उसे आया देखकर उसे असहाय समझ करके रहने के लिए जगह दी, पुत्री के समान उसका आदर किया। दो चार रोज तो जैसे ऋषि का खान पान था वो खाकर के समय बिताया। फिर विचार करती है कि यूं तो तू ऋषि के सिर पर बोझ बन करके रहेगी, अपने पेट के लिए तो अपना खाने पीने का प्रबंध खुद कर। ऋषि से पूछती, महाराज यहाँ कोई शहर है नजदीक में? ऋषि ने कहा, जहाँ बेटी यहाँ से 2-3 मील के फासले पर माधोपुर शहर है, बस इतना जान लिया। और जंगल से लकड़ी तोड़कर रानी रूपाणी वो लकड़ी लेकर शहर में गई, शहर में लकड़ी भेज दी, उससे जो धन मिला उससे खाने पीने का सामान लेकर ऋषि के आश्रम पर आगे रोजाना का ऐसा नियम बना लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, गर्भ का समय पूरा हुआ। भगवान की कृपा से रानी के पेट से लड़के का जन्म होता है। जन्म होते ही ऋषि ने उस लड़के को देखा, उसके हाथ पांव में ऐसी रेखाएं थी, ऐसे चिन्ह थे जो एक राजा के हुआ करते। यूं देखकर ऋषि ने अंदाजा लगाया लड़का किसी शाही खानदान से, मगर उसके बारे में उसकी माँ से जानने की कोई कोशिश नहीं की थी और माँ लकड़ी बेचकर गुजारा करती थी, इस वजह से ऋषि ने लड़के का नाम शाही लकड़ी हरा रखी। ऐसे 4 साल बीत जाते हैं, ऋषि शरीफ त्याग कर सुरख को चले गए और 4.25 साल बीत गए कि उस माधोपुर शहर में एक बीमारी फैल गई जिसका बहुत आदमी शिकार हुए। और बात यहाँ पर आ जाती है कि रानी रूपाणी उस बीमारी का शिकार हो जाती है। कई रोज से बीमारी बढ़ती गई, रानी लकड़ी लेकर शहर में नहीं गई थी, खाने पीने का सामान भी आश्रम पर खत्म हो गया था। बीमारी बढ़ती गई, लड़का भूख से दुखी माँ की उस बीमारी को बढ़ते देखकर पूछता है, हाँ माँ।
हाँ बेटा,
तेरा क्या हाल है?
बेटा आज मेरा अंत समय है।
अंत समय किसे कहते हैं माँ?
अंत समय कहते हैं मर जाने को।
वो क्या होता है?
बेटा इस शरीर से जीव बाहर निकल जाता है।
इसका मतलब?
इसका मतलब ये है, जो आवाज आ रही है ये फिर नहीं आएगी, सदा के लिए बंद हो जाएगी।
तो इसका ये मतलब है माँ कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी?
हाँ बेटा,
यहाँ ऋषि भी नहीं है और तुम भी छोड़कर जाओगी?
हाँ।
मैं अकेला ही जंगल में कैसे रहूंगा माँ?
बेटा मैं भी यही सोचती हूँ, मेरी बात सुनो। सुनाइए।
खतरा जब बेमार हुई तेरे किस पर लाड करूं बे Thank you.
स्वर्ग किधर चली और दुख बिच में के लौट करे बिन के जीवन में जिया कई दिन तक रोटी नहीं खाई पानी तक ना पिया
बात का रहस्य उद्घार किया। कई रोज से भूखा था विचार करता है, तेरी माँ लकड़ी बेचकर गुजारा किया करती थी, हो ना हो तू भी इसी तरीके से गुजारा कर। कुछ गिली सूखी लकड़ियां तोड़कर वो शहर में पहुंचा, कई दफा माँ के साथ शहर गया हुआ, बाहर जाकर सेठों के मोहल्ले में आवाज लगाई,
हो सिंधी की लकड़ी लो, हो लकड़ियां रे, सेठ जी कोई लकड़ी लो,
ओ लकड़ी आ रे,
सेठ जी कोई लकड़ी लो,
ओ लकड़ी आ रे।
यार कैसा आदमी है तू,
जब
कितनी आवाज दी,
आप मुझे आवाज दे रहे थे?
हाँ तेरे को बोल रहा था।
माफ करना मैं नहीं समझ पाया, मैं समझा शायद आप में किसी आदमी को आवाज दे रहे हो।
नहीं नहीं आपको बोल रहे थे।
कहिए क्या बात,
एक बात बतलाइए, ये लकड़ी बिकाऊ दे रहे हो?
बिकाऊ बिकाऊ का तो मुझे मालूम नहीं है, मगर बोझ मरने का भी शौक नहीं।
क्यों भाई,
हाँ
जो लकड़ी होगी तो हमने भी जरूरत थी,
आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए,
लकड़ी तो हम ले लेंगे।
हाँ। आप एक बात बतलाइए,
क्या आप कहाँ रहते हो और आपका क्या कुटुंब कबीला?
शेर जी ये कुछ ना पूछिए।
वो क्यों,
आपके शहर में नहीं रहता, शहर से दूर रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ।
अच्छा,
रही कुटुंब परिवार की बात, सिर्फ एक माँ का साया सिर पर था, वो भी सिर से उठ गया, अकेला रहता हूँ
अकेले।
हाँ
अच्छा तू एक काम कर, भूख लगी, तेरे को भूख लगी है? मैं अभी भोजन मंगवा देता हूँ तुम्हारे वास्ते। क्यों भाई तू एक काम करा कर,
क्या
ये लकड़ी हमारे यहाँ ले आकर,
अच्छा
और भोजन पा जा कर,
आप भोजन देंगे?
भोजन देंगे,
मैं लकड़ी ले आ करूंगा सिर्फ,
ठीक है? एक काम और करना होगा,
क्या
ये लकड़ी तो ना 20 जड़ी लानी पड़ेगी।
वो कितनी होती है?
तू नहीं जानता?
नहीं सेठ जी, मैं लिखा पढ़ा नहीं।
डायमंड होगा,
डायमंड, डायमंड,
हाँ
दो और आधी।
हाँ
नहीं सेठ जी, मुझसे नहीं चलेंगी।
क्यों,
ज्यादा है?
ज्यादा है,
बालक सो
तू।
हाँ
अरे तू बालक रहा है, चल चूटी नहीं ना देखा, नहीं बालक रहा ना देखा, जो बालक देख लो भाई,
ऊँटनी ना खड़ी खड़ी ना देखा दे,
और बाल्टी बाल्टी ने भी खाने में नकेल किया जाता।
मगर सेठ जी,
हाँ
कभी आपने बोझ उठाने का भी काम किया है?
नहीं 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 कभी भी नहीं।
हाँ तो फिर आप इस हार को नहीं जानते।
अरे जब मानस ने जब लियावनी हो,
हाँ।
जब एक वर्कर का लिया, दो वर्कर का लिया, तीन वर्कर का लिया, चार वर्कर का लिया,
क्या सुबह से शाम तक मैं इसी काम पर लगा रहूं?
और लड़की कुड़ी दे देंगे, लड़की कुड़ी
वो क्या होता है?
अरे घोड़े,
अरे घोड़े
यार कैसा आदमी है, देखिए आपको दोनों
वक्त, तो मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ।
हाँ देखिए आपको दोनों वक्त भोजन मिलेगा, दोनों वक्त, दोनों वक्त,
ठीक है ले आ करूंगा।
एक काम और करिए,
क्या
लाकड़ी यही हो,
ठीक है उन लकड़ियों में क्या खूबी थी कि जहाँ ऋषि के आश्रम में प्यारा रहता था, मन में उससे आश्रम के चारों तरफ एक एक मील के ही चंदन के बेड़े थे, लकड़ी हारे कोई ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार की और कितनी कीमती लकड़ी है। बस सिर्फ एक ही उद्देश्य उसका था कि पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए। सुबह से शाम तक 3-4 दफा भाई मन लकड़ी पूरी बराबर दोनों वक्त भोजन लाने लेने लग जाता, बोलो भोजन लाने लग जाता है और भाई मन लकड़ी लाने लग जाता है। और लकड़ी हारे का जिक्र छोड़िए कुछ देर के लिए, उस शहर में जो राजा राय सिंह राज करते थे, उनके पहले रानी थी, उससे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीना। वो रानी गुजर गई, राजा ने दूसरी शादी कराई, दूसरी रानी से एक और लड़की पैदा हुई जिसका नाम बीना। बड़ी रानी की बड़ी लड़की लिखाई पढ़ाई का काम किया था, उम्र से जवान बेहद खूबसूरत थी। छोटी रानी की छोटी लड़की खेल कूद में जिंदगी बिताया करती थी। एक दिन वो छोटी लड़की उस बड़ी लड़की से जाकर पूछती, बहन तुम क्या काम करते
हो? बिना जयराम जी की,
जयराम जी की
बहन, बहन आप 24 घंटे क्या करती रहती हो?
बहन मेरा काम ही क्या,
क्या
ये लिखना और पढ़ना?
एक के रहेगी लिखना पढ़ने में,
और के हमारे पास
हमारे पास
ये सारी सब्जियां हे बोले हे चल रंग चाकी हे
छोड़ दिया
बंबई कोरस कर
बाल
भी लाग ली अगर सारी आना चूरमा भांडे आंडे का तुम
करने के लिखण पढ़ण के धंधे के मां पिंजरो हार हार के
अच्छा
इस कागज के मां मगज मार के नहीं मर
देखिए भाई जब मर्द मानसा का झगड़ा हो
तो लठबाजे गोली चले तलवारों से लड़े खून हो जाए।
ऋषि महात्माओं का ज्ञानियों का अगर झगड़ा चले ज्ञान पर तो कुछ काम नहीं, और इनका झगड़ा हो जाए अर्ध न्यू कर दे दे तो बत्ती काम
अर्ध न्यू का न्यू खड़ा रह जाता कोई अर्ध नहीं और एक बन्यू हला अनार गोली सी लगे काम उजर गया देश का देश उजर
गया हाँ भाई
तेरे दिल्ली की जुड़े हट हट कम जाती
कही थी
हमारे
खाना पीना छूट जाता और पत्नी के मारे लड़ाई मेरे मुलाजा टूट जाता
में खेल रही थी कि इतने में कौन दो डाकू रामगढ़ रियासत के रहने वाले जिनका नाम विजय सिंह और जालिम सिंह काम लूट मार कर उन लड़कियों को गहने वस्त्रों से सजी देखकर आकर डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया। उधर राजा राज सिंह को भी खबर लगी तो कुछ फौज के सिपाही लेकर मौके पर पहुंचे और डाकुओं को वहां से पीट कर भगा दिया, लूट मार करने नहीं दिया। उस दिन के बाद से राजा राज सिंह ने यह नियम बना लिया कि रोजाना रात के समय शहर में गश्त लगानी शुरू कर देते। एक रोज रात के समय राजा राज सिंह अपने घोड़े पर सवार गश्त में घूम रहे थे, क्या देखते हैं कुम्हार सड़क पर सो रहा है, पैर का गदा बना हुआ है। उसे यूं बेफिक्री से सोता देखकर राजा राज सिंह ने अंदाजा लगाया कि यार बहुत भाग्यशाली आदमी है, किसी बात की चिंता नहीं, इतना बेफिक्री से सो रहा है। वो बाघ काफी देर तक सोच विचार करके घूमते घूमते अपने बाघ की तरफ चले गए रात को ही और बाघ के दरवाजे पर लिख दिया, जो इंसान बेफिक्र है वही खुश नसीब है। वो लेकर चले आए, सवेरा हुआ, दोनों लड़की बाघ की शेयर करने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर कुछ लिखा देखकर छोटी लड़की बड़ी लड़की से पूछती, बहनी किसने क्या लिख दिया?
पैर बिना ये हमारे बाघ के दरवाजे पर किसने क्या लिख दिया?
लिखा है
क्या?
जो इंसान बेफिक्र है
अच्छा
वही खुशनसीब है
अच्छा,
लेकिन ये गलत है।
गलत कैसे है बहनिए,
बेफिक्र से तो पशु भी अपना पेट भर लेता है।
अच्छा,
लेकिन उसको खुशनसीबी भी हासिल नहीं होगी,
इसलिए ये गलत है। और सही कैसे है?
सही तो ऐसे है, या तो इंसान अपनी शुभकर्णी से पार हो सकता है,
अच्छा,
या अपनी पतिव्रता स्त्री के धर्म से पार हो सकता है।
ठीक है,
ये मैंने लिख दिया है,
आपने लिख दिया,
चलिए
चलिए आइए चलिए।
वो बड़ी लड़की है ना, समझ सकी कि तेरे पिता ने लिखा है, मगर उसे गलत समझ कर काट दिया और कुछ लिखकर वहां से चली जाती। कुछ देर के बाद राजा रानी भी वाक्य शेयर करने के लिए गए और उस लिखे हुए को देखकर राजा रानी से पूछने के, ये तो मैंने लिखा था, ये किसी ने काट करके किसने लिखा है, तुम्हें मालूम हो तो बताओ रानी।
रानी
महाराज, जयराम जी की।
जयराम जी की, चल तना हवा खुवा के ले आऊं,
बस रोटी खा ली।
हां बने रोटी, रोज रोज खा है।
हां रानी।
हाँ जी।
टैक्स मेरी बात का जवाब कहने दिया
महाराज।
हाँ,
मैं आपकी बात का जवाब दे सकती हूँ, गुस्सा टैक्स सुना।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल
बड़ी लिखी नहीं। पिताजी मुझे पता है।
तेरे को क्या पता है?
आपकी बात का जवाब बहन बीना ने दिया है।
बीना ने?
जी हाँ।
खुश रहो।
आए बिना।
मुझे किसने याद किया?
आए बिना।
कहीं पिताजी,
इस मेरी बात का जवाब तने दिया?
पिताजी, मैं आपकी बात समझते हुए जवाब नहीं दिया।
और
ये किसने गलत लिखा था और मैंने इसको ठीक कर दिया।
गलत क्या था?
इसमें यह लिखा हुआ था, जो इंसान बेफिक्र है वही खुशनसीब है। पिताजी ये गलत है। बेफिक्र से तो पशु भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन उसको खुशनसीबी हासिल नहीं होगी, इसलिए गलत है।
और सही क्या है?
सही यह है, या तो इंसान अपनी शुभकर्णी से पार हो सकता है,
अच्छा,
या अपनी पतिव्रता स्त्री के धर्म से पार हो सकता है।
क्या पतिव्रता स्त्री के धर्म को तू जानती है?
मैं जानती हूँ, बड़े से बड़ा मानती हूँ।
बिना।
जी हाँ।
तेरी गलती, अपनी गलती की माफी मांग ले तू।
पिताजी, जब कोई इंसान गलती करता है तो उसकी माफी मांगी जाती है। मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी कैसे मांग लूं?
तने कोई गलती नहीं की?
कोई नहीं।
ए मकाच से खिंच जा, ओनीट से खिंच जा, छोरी मका मत ना देवड़े साप तू।
ताली कैसे की बात करते
हो? कमा घणी मोराल होगी दिखे थोड़ी। जाइए, हमने तेरा पति भर धर्म देखना है।
पिताजी, आप राजा है, से मेरे हाथ में रखी चीज को छीन सकते हैं।
अच्छा,
लेकिन मेरे से मेरा मुकद्दर नहीं छीन सकते।
वो देखा जाएगा।
तू जाके मेरी झोटड़ी खोल लगा। तू
झोटड़ी खोल लगा। तू खोल लगा
झोटड़ी के। हम तो कट उठ ना खोल देंगे। तो सारे
ले बैठा रही है भाई, दो दिन पीछे टूटा भरवा होगा उसमें। और पिता पुत्री में जिद हो जाती है।
राजा को बहुत गुस्सा आया कि लड़की को पाल पोस के जवान किया, लिखाया पढ़ाया, और लिख पढ़ने के बाद इतनी स्वाभिमान के बस है कि अपने बराबर किसी को नहीं मानती।
ये कम से कम पंडित जी ने 50 साल पहले सांग बना के ये बात कही होगी,
और वो बात आज साबित हो रही है कि आज का लिखा पढ़ा आदमी किसी दूसरे को अपने बराबर मानता नहीं।
कहीं गांव इकट्ठा हो तो बड़े आदमी डर के नहीं जाते। अब ये काल के हुए बाल के राजा ने क्रोध में आकर के हलकारों को बुलाया, हुक्म दिया कि जो हलकारा कंगाल से कंगाल आदमी को खोज कर लाएगा भाई राम, और ठीक है उससे बहुत इनाम दूंगा, और इस लड़की की शादी उस कंगाल के साथ करूंगा। देखता हूँ ये कैसी अपने भाग्य पर जीती है। राजा का हुक्म सुनकर हलकारे कंगाल की तलाश में चले, और उधर से वो लकड़ी हारा जिसकी मां मरी थी, जंगल से लकड़ी तोड़ी भरोटा तैयार किया, और शहर की तरफ चलने से पहले अपना कुछ दुख होता है बहुत अच्छा।
Oh,
कोई धाम नहीं, घर गाम नहीं, मैं बन में एकला।
बन में एकला, ठीक परिवार।
मैं नित भूखा प्यासा मरूं, रात दिन न्यू जंगल में फिरूं।
अच्छा,
करूं कोई फैल नहीं, रंग महल नहीं, मेरी कोई गैल नहीं, मैं बन में एकला।
आपकी गैल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात,
मैं नित डरता पाप विशेष है, दुख भोगूं सो दिना निषेध है।
अच्छा,
किसे ते प्यार नहीं, तकरार नहीं, कोई मेरा यार नहीं, मैं बन में एकला, ठीक है।
बहुत ठीक।
लेता बड़खंड की खुशबोई, किसे की नहीं करता बिगदोई।
अच्छा,
कोई मेरे साथ नहीं, सुखी गात नहीं, मेरे जात नहीं, मैं बन में एकला।
आपका जाति भी नहीं। अच्छा, चौथी बात,
लक्ष्मी चंद आगे की चेत, न्यूए कर लेना से शरीर का रेत।
अच्छा,
खेत बिन बरु नहीं, रंग शुरू नहीं, मैं बिन गुरु नहीं, बन में एकला।
गुरु महाराज तो है,
गुरु महाराज जरूर,
ठीक है। तो पकड़ो, अरे आपसे बहुत जरूरी काम
है। मैं तुम्हारे
काम है, आपसे बहुत जरूरी काम है।
अरे मत, look. यखनी चंद बुरा स्वाद जीव का है। बोल रे बोल मेरे यावेगा याद जीव का है।
हाँ घबराओ मत।
हाँ
ओए होए क्या ना कहे है
बकस जो मेरी पेदरी हाल दुखी दुनिया से न्यारा रखित का दुनिया पर
सब दो आदमी
वो तुम करा लो भाई।
ओए तिमी आएगी तिमी अरबी से
और के
मुंह की मेरा भाई
रोटी बना रही बोड़िया आएगी बोड़िया।
खाने पीने की चीज होती है
नहीं बिछाने की चीज होती है। कैसा बुद्धू आदमी
तुम खड़े डेम सोया करो।
इसको हिंदी में समझाओ
उस्ताद इसको हिंदी में समझाओ।